आदर्श बालकों की अमर कहानियाँ। आज हम आपको सुनवा रहे हैं बार्बरिक की कथा। वाचक स्वर अनुज श्रीवास्तव।
पांडुनंदन महावीर भीमसेन ने अपने अज्ञातवास के काल में हिडिंबा नामक राक्षसी से विवाह किया था और उससे घटोत्कच नामक उनके एक अतुल पराक्रमी पुत्र हुआ था। भगवान श्री कृष्ण के आदेश से घटोत्कच ने भौमासुर के नगरपाल मुरदानव की परम सुंदरी कन्या काम कटका से विवाह किया। घटोत्कच को मुरकन्या से बर्बरीक नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। बालक बर्बरीक जन्म से ही विनयी, धर्मात्मा और वीर था। उसे साथ लेकर घटोत्कच द्वारका गया और वहां उसने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पुत्र के साथ प्रणाम किया। बर्बरीक ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, आदिदेव माधव, संसार में जीवन का कल्याण किस प्रकार होता है? और कोई धर्म को कल्याणकारी बताते हैं तो कोई धन को, दान, तप, मोक्ष और कोई भोग को बताते हैं। प्रभु, इन सैकड़ों उपायों में से मेरे कुल के लिए जो उपाय उपयुक्त और श्रेष्ठ हो उसका आदेश आप मुझे करें। तब भगवान बोले, बेटा, जो जिस कुल में और जिस वर्ण में पैदा हुआ है उसके कल्याण का साधन उसी के अनुरूप निर्धारित है। ब्राह्मण के लिए तप, इंद्रिय संयम और स्वाध्याय कल्याणकारी है। क्षत्रिय के लिए प्रथम साध्य बल है, क्योंकि बल के द्वारा ही वो दुष्टों का दमन और साधुओं का रक्षण कर अपना कल्याण कर सकता है। तुम क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हो, इसलिए पहले तुम अतुलनीय बल की प्राप्ति का उद्योग करो। भगवती शक्ति की कृपा से ही बल की प्राप्ति होती है, अतः तुम्हें शक्ति रूपा देवियों की आराधना करनी चाहिए। बर्बरीक के पूछने पर भगवान ने उसे महिसागर संगत तीर्थ में जाकर देवर्षि नारद द्वारा लाई गई नव दुर्गाओं की आराधना करने का आदेश दिया। बर्बरीक ने भगवान की आज्ञा का पालन किया। 3 वर्ष की आराधना के बाद देवियां प्रसन्न हुईं। उन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन देकर उसे वरदान दिया कि तीनों लोकों में जो बल किसी में नहीं है ऐसा अतुलनीय बल तुम्हें प्राप्त हो। वरदान देकर उन्होंने कहा, पुत्र, तुम कुछ समय तक यहीं निवास करो। यहां विजय नामक एक ब्राह्मण आएंगे, उनके संग से तुम्हारा और अधिक कल्याण होगा। देवियों की आज्ञा मानकर बर्बरीक वहीं रहने लगा। कुछ समय बाद मगध देश के विजय नामक ब्राह्मण वहां आए। उन्होंने कुमारेश्वर आदि सहित 7 शिवलिंगों का पूजन किया और विद्या की सफलता के लिए बहुत दिनों तक देवियों की आराधना की। स्वप्न में देवियों ने उन्हें आदेश दिया कि तुम आंगन में सिद्ध माता के सामने अपनी संपूर्ण विद्याओं की साधना करो। हमारा भक्त बर्बरीक तुम्हारी सहायता करेगा। प्रातःकाल विजय ने भीमसेन के पौत्र बर्बरीक से कहा, तुम निद्रा रहित एवं पवित्र होकर देवी के स्नान पाठ करते हुए यहीं रहो, जिससे जब तक मैं अपनी विद्याओं की साधना करूं तब तक कोई विघ्न न हो। विजयी अपनी साधना में एकाग्रचित हो लीन हो गए और बर्बरीक उनकी सावधानी से रक्षा करता हुआ खड़ा रहा। विजय की साधना में विघ्न पहुंचाने वाले रेपलेंद्र नामक महादानव तथा द्रुहा नामक राक्षसी का संहार उसने किया। इसके बाद पाताल में जाकर नागों को पीड़ा देने वाले पलासी नामक भयानक असुरों को रौंद कर यमलोक भेज दिया। इससे प्रसन्न होकर नागराज बासुकी ने बर्बरीक से वर मांगने को कहा। बर्बरीक ने केवल ये वर मांगा, विजय निर्विघ्न साधन करके सिद्धि प्राप्त कर। कई नाग कन्याओं ने बर्बरीक के अतुल पराक्रम के प्रति मुग्ध होकर उससे विवाह का प्रस्ताव भी रखा, किंतु जितेंद्रिय बर्बरीक ने विनम्रता पूर्वक उनका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उसने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले रखा था। जब बर्बरीक पाताल से लौटा तो विजय ने उसे हृदय से लगा लिया। उस सिद्ध पुरुष ने कहा, वीरेंद्र, मैंने तुम्हारी अनुकंपा से ही सिद्धि प्राप्त की है। मेरे हवन कुंड में सिंदूर के रंग की परम पवित्र भस्म है, उसे तुम अपने हाथ में भरकर ले लो। युद्ध भूमि में इसे छोड़ देने पर साक्षात मृत्यु भी अगर शत्रु बनकर आ जाए तो उसे भी मरना पड़ेगा। इस प्रकार तुम शत्रुओं पर सरलता से विजय प्राप्त कर सकोगे। तब बर्बरीक ने कहा, उत्तम पुरुष वही है जो निष्काम भाव से किसी का उपकार करता है। जो किसी वस्तु की इच्छा रखकर उपकार करता है, उसकी सज्जनता में भला क्या गुण है? ये भस्म आप किसी और को दे दें, मैं तो आपको सफल और प्रसन्न देखकर ही प्रसन्न हूं। विजय को देवताओं ने सिद्धेश्वयं प्रदान किया, उनका नाम सिद्धशेर हो गया। वो वहां से चले गए। इसके कुछ काल बाद पांडव लोग वनों एवं तीर्थों में घूमते हुए उस तीर्थ के पास पहुंचे। पांचों पांडव और द्रौपदी बहुत थके हुए थे। चंडिका देवी का दर्शन कर वो वहां बैठ गए। बर्बरीक भी उस समय वहीं था, पर पांडवों ने न तो कभी बर्बरीक को देखा था और न बर्बरीक ने पांडवों को, अतः वे एक दूसरे को पहचान न सके। प्यास से व्याकुल भीमसेन जल पीने के लिए कुंड की ओर जाने लगे तो युधिष्ठिर ने उन्हें समझाते हुए कहा, पहले जल लेकर कुंड से दूर हाथ पैर धो लो, तब जल पीना। किंतु प्यास से व्याकुल भीमसेन ने युधिष्ठिर की बात अनसुनी कर दी और जल में ही उतरकर हाथ पांव धोने लगे। उन्हें ऐसा करते देख बर्बरीक ने डांट कर कहा, तुम देवी के कुंड में हाथ पैर धोकर उसे दूषित कर रहे हो। मैं सदा इसी जल से देवी को स्नान कराता हूं। जब तुम में इतनी भी समझ नहीं है तो क्यों व्यर्थ में तीर्थ घूमते फिरते हो? जल स्नान करने के लिए है और तीर्थों में स्नान करने की आज्ञा है, भीम ने गरज कर कहा। जिनका जल बहता रहता है ऐसे ही तीर्थों में जल में उतरकर स्नान करने का प्रावधान है, बर्बरीक ने भी स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया। कूप सरोवर आदि से जल लेकर बाहर स्नान करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का विधान है। जो ऐसे जल में उतरकर मलमूत्र, कफ, थूक, विष्ठा और कुल्ला छोड़ते हैं वो ब्रह्म हत्यारे के समान है। इस पर भी जब भीमसेन ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया तो बर्बरीक ने एक ईंट का टुकड़ा उठाकर उन्हें मारा। बर्बरीक के फेंके ईंट के टुकड़े का वार बचाकर भीमसेन जल से बाहर निकल आए और उससे भिड़ गए। दोनों ही महाबली थे, अतः जमकर मल्ल युद्ध होने लगा, पर दो घड़ी में ही भीमसेन कमजोर पड़ गए। बर्बरीक ने दोनों हाथों से उन्हें अपने सर के ऊपर उठा लिया और समुद्र में फेंकने के लिए चल पड़े। ऐसी नाजुक स्थिति में भगवान शंकर आकाश में प्रकट हुए और उन्होंने कहा, बर्बरीक, उन्हें छोड़ दो, ये भरत कुल के रत्न तुम्हारे पितामह पांडुनंदन भीमसेन हैं, ये तुम्हारे द्वारा आदर किए जाने योग्य हैं। ये सुनकर बर्बरीक ने भीमसेन को छोड़ दिया और उनके चरणों पर गिर पड़ा। वो स्वयं को धिक्कारने, फूट फूट कर रोने और बार बार क्षमा मांगने लगा। उसे अत्यंत व्याकुल होते देख भीमसेन ने उसे छाती से लगा लिया और सांत्वना देते हुए बोले, बेटा तुम्हारा कोई दोष नहीं है, भूल हमसे ही हो रही थी। कुमार्ग पर चलने वाला कोई भी हो, क्षत्रिय को उसे दंड देना ही चाहिए। मैं बहुत प्रसन्न हूं, मेरे पूर्वज धन्य हैं कि जिनके कुल में तुम्हारे जैसा धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न हुआ है। तुम सत्पुरुषों द्वारा प्रशंसनीय हो, अतः तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। बर्बरी का शोक इससे मिटा नहीं। वो बोला, मैं प्रशंसा के योग्य नहीं, सब पापों का प्रायश्चित है, किंतु जो माता पिता का भक्त नहीं उसका उद्धार नहीं होता। जिस शरीर से मैंने अपने पूज्य पितामह का अपराध किया है उसे आज महिसागर संगम में त्याग दूंगा, जिससे दूसरे जन्मों में मुझसे ऐसा अपराध न हो। वो समुद्र के किनारे पहुंचा और कूदने को उद्यत हो गया। तब सिद्धांबिका तथा चारों दिशाओं की देवियां भगवान रुद्र के साथ वहां आईं। उन्होंने बर्बरीक को समझाया और आत्महत्या करने से रोका। उनके रोकने पर उदास मन से वो लौट आया। उसके पराक्रम को देखकर पांडवों को बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्हें प्रसन्नता हुई, उन्होंने बर्बरीक की प्रशंसा की। जब पांडवों के वनवास की अवधि समाप्त हो गई और दुरात्मा दुर्योधन ने उनका राज्य लौटाना स्वीकार नहीं किया, तब कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध की तैयारी होने लगी। युद्ध के प्रारंभ में महाराज युधिष्ठिर ने अर्जुन से अपने पक्ष में महारथियों की शक्ति के विषय में प्रश्न किया। सबके पराक्रम की प्रशंसा कर अर्जुन ने अंत में कहा, मैं अकेला ही कौरव सेना को एक दिन में नष्ट करने में समर्थ हूं। ये सुनकर बर्बरीक से न रहा गया। उसने कहा, मेरे पास ऐसे दिव्य अस्त्र शस्त्र एवं पदार्थ हैं कि मैं एक मुहूर्त में ही सारी कौरव सेना को यमलोक भेज सकता हूं। श्री कृष्ण ने पूछा, बेटा तुम भीष्म द्रोण आदि से रक्षित कौरव सेना को एक मुहूर्त में कैसे मार सकते हो? भगवान की बात सुनकर अतुल बली बर्बरीक ने अपना भयंकर धनुष चढ़ा लिया और उस पर एक बाण रखा। उस पोले बाण को लाल रंग से भरकर कान तक खींचकर उसने छोड़ दिया। उसके बाण से उसी लाल रंग की भस्म दोनों सेनाओं के सैनिकों के मर्म स्थल पर जाकर गिरी। केवल पांडवों कृपाचार्य व अश्वत्थामा के शरीर पर वो नहीं पड़ी। तब बर्बरीक बोला, आप लोगों ने देख लिया है कि मैंने इस क्रिया से मरने वाले वीरों के मर्म स्थान का निरीक्षण किया है। अब देवी के दिए हुए तीक्ष्ण बाण उनके उन मर्म स्थानों पर मारकर उन्हें सुला दूंगा। आप लोगों को धर्म की सौगंध है, कोई शस्त्र न उठाए। मैं 2 घड़ी में ही शत्रुओं को मार देता हूं। बर्बरीक अतुल बली धर्मात्मा और विनयी था, किंतु इस अहंकारवश उसने धर्म की मर्यादा तोड़ दी। दोनों सेनाओं में अनेक वीरों को देवताओं ऋषियों आदि से वरदान प्राप्त थे। उन सब वरदानों के व्यर्थ होने से देवता धर्म और तप की मर्यादा ही नष्ट हो जाती। धर्म की मर्यादा की रक्षार्थ अवतार धारण करने वाले श्री कृष्ण ने बर्बरीक की ये बात सुनकर अपने चक्र से उसका सर काट दिया। बर्बरीक के मरने पर सब लोग भौचक्के रह गए। पांडव शोक में डूब गए। घटोत्कच मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी समय वहां 14 देवियां आईं। उन्होंने बताया, पूर्व जन्म में बर्बरीक सूर्यवर्चा नामक यक्ष था। देवता ब्रह्मा जी के साथ जब पृथ्वी का भार उतारने के लिए मेरु पर्वत पर भगवान नारायण की स्तुति कर रहे थे, तब अहंकारवश उस यक्ष ने कहा था, पृथ्वी का भार तो मैं ही दूर कर दूंगा। उसके गर्व के कारण रुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने उसे शाप दे दिया कि भूमि का भार दूर करते समय भगवान उसका वध करेंगे। ब्रह्मा जी के उस श्राप को सत्य करने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को मारा। भगवान के आदेश से देवियों ने बर्बरीक के सिर को अमृत से सींच कर राहु के सिर के समान अजर अमर बना दिया। उस सिर ने युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की, अतः भगवान ने उसे एक पर्वत पर स्थापित कर दिया और जगत में पूज्य होने का वरदान दिया। महाभारत युद्ध के अंत में धर्मराज युधिष्ठिर भगवान के बार बार कृतज्ञ हो रहे थे। उनके अनुग्रह से ही उन्हें युद्ध में विजय प्राप्त हुई। इस पर भीमसेन ने सोचा, धृतराष्ट्र के पुत्रों को तो मैंने मारा है, फिर धर्मराज श्री कृष्ण की इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? भीमसेन ने जब अपने मन की बात प्रकट की तो अर्जुन ने उन्हें समझाया, भीष्म द्रोण आदि ये त्रिलोक जयी शूर मेरे आपके द्वारा नहीं मारे गए, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। युद्ध में विजयी तो किसी अज्ञात पुरुष के द्वारा हुई, जिसे मैं सदा अपने आगे आगे चलता देखता था। अर्जुन की बात सुनकर भीमसेन हंस पड़े। उन्हें लगा कि अर्जुन को भ्रम हो गया है। ठीक निर्णय जानने के लिए वे अर्जुन और श्री कृष्ण के साथ पर्वत पर गए और बर्बरीक के सिर से पूछा, बेटा तुमने पूरा युद्ध देखा है, बताओ कि युद्ध में कौरवों को किसने मारा? बर्बरीक ने कहा, मैंने तो शत्रुओं के साथ केवल एक व्यक्ति को युद्ध करते देखा। उसके बाईं ओर 5 मुख थे और दाईं, उसके बाईं ओर 5 मुख थे और 10 हाथ थे, जिसमें त्रिशूल धनुष गदा तलवार आदि वो धारण किए हुए था। दाहिनी ओर पर 1 मुख और 4 भुजाएं थीं, जिनमें चक्र आदि अस्त्र शस्त्र थे। बाईं ओर उसकी जटाएं थीं और ललाट पर चंद्रमा शोभित हो रहे थे तथा अंग में भस्म लगा हुआ था। दाहिनी ओर मस्तक पर मुकुट झलमला रहा था, अंगों में चंदन लगा था और कंठ में कौस्तुभ मणि शोभा दे रही थी। उस व्यक्ति को छोड़कर मैंने कौरव सेना का नाश करने वाले अन्य किसी और व्यक्ति को नहीं देखा। बर्बरीक के इतना कहते ही आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। भीमसेन लज्जित होकर भगवान श्री कृष्ण से बारंबार क्षमा याचना करने लगे। भगवान तो क्षमा के सागर हैं, भगवान तो क्षमा के सागर हैं। उन्होंने हंसकर भीमसेन को गले लगा लिया। इसके पश्चात भगवान ने बर्बरीक के सिर के पास जाकर कहा, तुम्हें इस क्षेत्र का त्याग नहीं करना चाहिए।
ये थी अरपरेजो.com की प्रस्तुति।